ओम शांति। बड़ा सुंदर सा गीत बज रहा था, आंखों में बाबा तेरी क्या जलवे कर दिखाए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितने वर्षों तक पुरुषार्थ किया, तीव्र पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ कि बाबा जब सोते थे और नींद में कभी उनकी आंख खुलती थी तो बाबा नींद में से आंख खुलने पर भी क्या करते थे, सकाश देते थे। इतनी चिंता थी उनको सारे संसार की कि कितनी दुखी पीड़ित आत्माएं हैं। इसी तरह से हमारी बड़ी दादी जी, अगस्त मास गया तो हमने दादी जी को याद किया, दादी डे मनाया। दादी जी ने भी कितना पुरुषार्थ किया, यज्ञ की पालना की। बाबा ने जो दादी के संदेश दिए 12, उसमें से बाबा ने दादी जी के बारे में कहा कि दादी कभी भी समय अपने लिए नहीं रखती थी, परंतु सारा समय दूसरों के लिए था। और सारे संगठन को, एक ब्राह्मण संगठन को एक सूत्र में बांधकर दादी जी ने यज्ञ की पालना की। ऐसे ही हम बड़े बड़े यज्ञ में महारथियों को देखें, जगदीश भाई जी और सारी हमारी दादियाँ, सब ने कितना पुरुषार्थ किया। तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ अर्थार्थ क्या? मम्मा कहते थे पुरुषार्थ अर्थार्थ अगर एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट ना हो। पुरुषार्थ अर्थार्थ एक बात अगर कोई बता दी हमको तो दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाबा ने एक वरदान में कहा था, पुरुषार्थ अर्थार्थ जो स्थिति हमारी अभी है, नेक्स्ट सेकंड जो हमारी स्थिति होगी वो उससे ऊंची होनी चाहिए। इसका अर्थ है पुरुषार्थ। तो आज हम कुछ बात करेंगे पुरुषार्थ के बारे में, तीव्र पुरुषार्थ। वैसे तो हम सब अमृत वेला उठते हैं, मुरली क्लास सुनते हैं, शाम का योग करते हैं, परंतु हम इसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थ कुछ और है। तीव्र पुरुषार्थ अपने पर काम करना है, बहुत सूक्ष्म रीति से। तो जैसे कि हमने इस पे चिंतन किया, तो पहला पॉइंट है जैसे कि अंदर का पुरुषार्थ। तो एक बार क्या हुआ, एक कहानी सुनाते आपको। एक बार एक हथौड़ा था और एक चाबी थी। तो हथौड़े ने चाबी से कहा कि चाबी बहन, आप कितनी छोटी हो लेकिन आप ताले को तुरंत खोल देती हो, और मैं इतना बड़ा हूं और मैं हथौड़ा मार मार के फिर भी ताले को नहीं तोड़ पाता। तो चाबी ने क्या उत्तर दिया होगा? तो चाबी ने कहा कि हथौड़े भाई, तुम बाहर से काम करते हो और मैं क्या करती हूं, अंदर से। मैं अंदर घूमती हूं, घुसती हूं और राइट घूमती हूं तो ताला खुल जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अंदर से पुरुषार्थ करना है, बाहर का दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर हमने अपने संस्कारों को कितना परिवर्तन किया है ना। तो जैसे कि हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखते हैं तो हम सिर्फ उनको दवाई नहीं देते ठीक होने के लिए, है ना, उसके साथ हम उनको डाइट बताते हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना है बताते हैं, तब जाके उनकी बीमारी ठीक होगी। अगर वो खुद ही पुरुषार्थ नहीं करे और सोचे कि सिर्फ डॉक्टर ही हमको दवा दे दे और हम ठीक हो जाएंगे, तो क्या ठीक होंगे वो? अगर किसी को डायबिटीज है और वो सिर्फ दवा लेके जाए और सोचे कि ये दवा लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, डाइट की क्या जरूरत, मीठा खाते रहता हूं, तो ठीक होगा वो? नहीं होगा। तो सबसे पहले है कि अंदर का पुरुषार्थ, आंतरिक पुरुषार्थ। दूसरा जैसे कि है मन की एकाग्रता। हम पुरुषार्थ करते हैं ना तो हम देखते हैं मॉर्निंग में जब हम उठते हैं अमृत वेला तो मन शांत रहता है। तो अमृत वेला अच्छे से अर्षतिदीपन का अभ्यास बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन जब हम सेवा में जाते हैं और फिर उसके बाद शाम को जब योग में बैठते हैं तब क्या होता है, तब मन थोड़ा यहाँ वहाँ भागता है, सारे दिन भर जो होता है वो सामने आता है हमारे। तो दूसरा पॉइंट है मन की एकाग्रता को कैसे लाए, है ना। तो जैसे कि एक बार एक अनुयायी अपने गुरुजी के साथ एक जंगल में जा रहा था और उसका मन बहुत अशांत था, बहुत चंचल, कभी यहाँ जाता तो कभी वहां जाता। तो उसने सोचा कि संसार में ऐसा क्यों है कि किसी किसी का मन बहुत भटकता है और किसी किसी का मन बहुत शांत रहता है ना, हम भी देखते हैं ना। तो वो अपने गुरुजी से सवाल करता है कि ऐसा क्यों है कि संसार में किसी का मन बहुत भटकता है और किसी किसी का मन बहुत शांत रहता है, बहुत काम रहते हैं वो लोग। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी के अंदर कहानी, तो वो कहते हैं कि एक जंगल में एक हाथी था। हाथी क्या कर रहा था, पत्ते खा रहा था। तो थोड़ी देर में वहां क्या हुआ, एक छोटी सी मक्खी आ गई वहां पर और मक्खी उसके कानों में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो हाथी ने क्या किया, अपने बड़े से कानों से उसको हटा दिया। फिर वापस मक्खी आई, फिर हटा दिया, ऐसे बार बार होता गया। तो फिर हाथी ने पूछ ही लिया मक्खी से कि तुम इतनी अशांत क्यों हो, तुम कभी यहाँ आ रही हो कभी वहां आ रही हो, तुम एक जगह पे बैठती क्यों नहीं। मक्खी को देखा होगा ना, मक्खी कभी एक जगह पे नहीं बैठती, अगर हम उसको मारने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं मार पाते, वो कितने यहां से वहां यहां से वहां उड़ते रहती है, तो ऐसा क्यों। तो मक्खी ने उत्तर दिया कि मेरी जो पांच कर्मेंद्रिया है ना, वो सब जगह पर आकर्षित हो जाती है। कोई भी खुशबू देखूं मैं, या मैं कुछ देखूं, खुशबू सूंघूं, मेरी अंग अंग जो है ना वो आकर्षित हो जाता है, इसीलिए मैं एक जगह पर बैठ ही नहीं सकती, इसीलिए मैं बहुत चंचल हूं। तो फिर मक्खी हाथी से पूछती है कि आप इतना शांत कैसे हो। हाथी को देखा होगा ना, हाथी कैसे चलता है, कितने आराम से चलता है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो हाथी कहता है कि मेरी जो पांच कर्मेंद्रियां है ना, वो मेरे वश में है। अब अगर मैं भोजन कर रहा हूं ना, तो मैं पूरा भोजन में ही डूबा हुआ हूं, यानी कि मेरा अटेंशन और कहीं नहीं जाता। तो फिर वो अनुयायी को समझ में आता है कि मन भागता क्यों है जब कर्मेंद्रिया वश में नहीं हो, जब कर्मेंद्रिया चंचल हो, जब हमारे अंदर कोई इच्छाएं हो, जब मन में कोई इच्छा होगी तो मन उसी तरफ भागेगा ना। तो इसी तरह से मन वहां वहां भाग रहा था। तो मन को एकाग्र करना है, तो मन को कैसे एकाग्र करेंगे। ऐसे ही कुछ साल पहले फॉरेनर्स का सीजन था और फॉरेनर्स को हमेशा पांडव भवन ज्ञान सरोवर में रहने मिलता है। तो एक बहन यहाँ पे जब पहुंची तब उसको पता चला कि इस बार अकोमोडेशन हमारा शांतिवन में है, हमको पांडव भवन में अकोमोडेशन नहीं है। तो उनका मन बड़ा अशांत हो गया, कुछ समय तक वो बहुत दुखी हो गई। और फिर उसके बाद वो दादी के पास गई, फिर दादी ने कहा ठीक है आप मधुबन जाके रहो। फिर उसको थोड़ी देर में ऐसा लगा कि अरे इतने समय के लिए मेरा मन अशांत था, तो जब मेरा मन अशांत था तो मैं कितनी दुखी हो गई, और अगर मैं दुखी हो गई तो मैं किसी की सेवा नहीं कर सकती, है ना। तो मन जब अशांत है, एकाग्र नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे होगा। तो पुरुषार्थ में मन की एकाग्रता को लाना है। तीसरा है चिंतन। बहुत लोग योग के पीछे ही भागते है ना। आज जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे याद भी नहीं करते, 8 घंटा याद अंत में होगी। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 8 घंटा याद ही, उसमें हमारा ज्ञान का मनन चिंतन भी होता है। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे जो ब्रेन की शक्ति है वो नहीं बढ़ेगी। कहते हैं जो साइंटिस्ट है ना आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का ब्रेन, उसके ब्रेन की स्टडी की गई थी, उसने सिर्फ अपने ब्रेन का 16% यूज किया। तो देखो उसने कितनी इन्वेंशंस की, है ना। और ऐसे कहते हैं कि मनुष्य जो है ना, वो अपने ब्रेन का बहुत कम यूज करता है, और बार बार जब हम उसको यूज करते हैं तब उसमें नए नए न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। छोटी छोटी सेल्स जो होती है ब्रेन की, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स कैसे जनरेट होते हैं, जब उसको बार बार यूज करते हैं। तो जैसे कि हम तो यूज ही नहीं कर रहे आजकल, ज्ञान से अलग भी देखें तो हमारे पास मोबाइल फोन्स है ना। पहले हमको सबके नंबर्स याद रहते थे, हमारे को हमारे पिताजी, माताजी, बहन, भाई, रिलेटिव्स सबके नंबर याद रहते थे, परंतु अब नंबर याद नहीं रहते क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल में है। और अभी भी देखो, हम कुछ अगर याद रखने से अच्छा लिख लेते, सोचते लिख लेते, और अगर कुछ याद नहीं आएगा तो तुरंत उसको खोल के देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर इस ब्रेन की पावर को बढ़ाना है, अगर चिंतन शक्ति को बढ़ाना है, तो बार बार एक याद करने की आदत डालनी होगी, उसको सोचना है, सोचते सोचते वो चीज़ याद आ जाएगी। तो ये है, चिंतन पर तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि चिंतन कैसे करना है, चिंतन कहाँ करना है, किस बात पर चिंतन करना है, लेकिन हम कुछ अलग पॉइंट्स बता रहे हैं आज कि किस तरह से छोटी छोटी पॉइंट्स को हम पुरुषार्थ में लेकर आए। फिर चौथा है कि पुरुषार्थ में अगर आगे बढ़ना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो लोगों से दुआएं भी कमानी है ना। तो दुआएं कैसे कमाएंगे? तो जैसे कि कुछ दिन पहले बाबा का वरदान था, ज्ञान रत्नों का अगर दान करेंगे तो मास्टर नॉलेजफुल का वरदान मिल जाएगा। ऐसी आत्माओं के एक एक बोल सुनने के लिए आत्माएं प्यासी रहेगी, उनके बोल प्रभावशाली होंगे, उनके हर शब्दों में सार समाया हुआ होगा, है ना, और उनको खुशी की प्राप्ति होगी, संतुष्टता की प्राप्ति होगी, और उनको गुणों का दान मिलेगा, खजानों से भरपूर रहेंगे। तो बाबा ने ज्ञान रत्नों के बारे में बोला। तो जब हम ज्ञान रत्नों का दान करेंगे तो हमको भी खुशी मिलेगी और दूसरों से हमको दुआएं मिलेगी। और इतनी सारी जो बाबा ने पॉइंट्स बताई उस दिन वरदान में, इतनी सारी पॉइंट्स हमको मिलेगी। तो हम कैसे, वाणी में गुणों का दान होगा, वाणी में गुण आ जाएगा। तो देखो कितने सारे फायदे हैं, है ना। तो इसी तरह से जैसे कि कोई छोटी सी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन जब लोग आते हैं और लोग वापस जाते हैं यहाँ से, तो उनको क्या याद रहता है? उनको वो भाषण इतने याद रहते, इतने दिन में सुनाए हुए, इतने सारे एक साथ नहीं, उनको वो याद रहता है जो उनको भोजन परोसते, उनको वो याद रहता है जो अगर बारिश में उनको छाता दे दे, उनको वो याद रहते हैं जो उनको ट्रांसपोर्ट दे दे, उनको वो याद रहते हैं जो उनका लगेज उठाए, उनको ये लोग याद रहते हैं। इसलिए हम हमारे डॉक्टर्स को भी बोलते हैं हॉस्पिटल में कि जब कोई पेशेंट आता है ना, तो वो पेशेंट मेजर जो डॉक्टर होता है ना, शायद उसको भूल जाता है, लेकिन जो नर्स उसका प्यार से केयर करती है ना, जो वार्ड बॉय उसको रोज देखता है, अगर एक फ्रैक्चर का पेशेंट आया, वो कितने दर्द में आता है हमारे पास, तो जो लोग उसको हेल्प करते हैं ना स्ट्रेचर पे डालने के लिए, वो उनको याद रखता है। शायद वो ऑर्थोपेडिक सर्जन को याद नहीं रखेगा, लेकिन उनको याद रखता है, उनको दुआएं देता है, और हॉस्पिटल का वातावरण उनसे बनता है। तो हमारा भी वातावरण मधुबन का हमसे बनता है, है ना। ऐसे ही एक बार संदेश में बाबा ने कहा, मधुबन से संदेश गया था दादी जी के लिए, ये छठा संदेश था जब दादी अव्यक्त हुए तब, 30 अगस्त 2007 का। उसमें बाबा ने कहा कि अगर बच्चे बाप दादा और दादी जी का गुणों के सिमरण करते रहेंगे तो ये वातावरण और वाइब्रेशन में शक्ति भरती जाएगी, इसमें पावर भरते जाएगा, लोगों को खुशी महसूस होगी, हल्कापन अनुभव होगा, और ये एक तीर्थ स्थान अनुभव होगा, एक यादगार स्थान अनुभव होगा, और ये हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि हम इस वातावरण को शक्तिशाली बनाएं, हम ऐसे व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में ना जाएं। उस दिन जो 10 पॉइंट थे दादी जी के, है ना, उस दिन मुरली में 10 पॉइंट थे, उसमें से एक पॉइंट था ना कि किसी भी देहधारी को दोस्त बनाकर क्या नहीं करो, व्यर्थ चिंतन और फल चिंतन नहीं करो, है ना। ये हम करने नहीं आए यहाँ पर। अगर ये करके हम वातावरण को दूषित करेंगे तो हमारे पर बोझ चढ़ेगा, तो पुरुषार्थ कैसे होगा? एक तरफ हम चाहते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थ करें, और एक तरफ अगर हम व्यर्थ चिंतन में लग गए, कोई देहधारी में अटक गए, तो फिर लीकेज होगी, ठीक है। तो एक था ये ज्ञान रत्नों का दान, ऐसे ही हमारी दादियां देखो कैसे दान करती है, गुणों का दान। जैसे बाबा हमेशा जानकी दादी को याद करते हैं कि जनक बच्ची गुणों के दान में नंबर वन गई है ना। और जैसे वो एक संदेश था उसमें दादी जी का एक साक्षात्कार मुहूर्त दिखाया एक संदेश में, जिसमें दादी जी उस दिन जैसे कि पूजनीय और पावन स्वरूप में थी और भक्तों को अव्यक्त बाप दादा का भी साक्षात्कार करा रही थी क्योंकि वो बाबा की याद में समाई हुई है। तो बाबा ने उस संदेश में कहा कि जैसे दादी बाबा की याद में समाई हुई रही, जैसे उसने यज्ञ की पालना की, बेहद की पालना की, उदाहरण मूर्त बनी, रहम भाव से अपने गुणों से सबकी पालना की, ऐसे आप एक जिम्मेदार आत्माओं का भी यही कर्तव्य है कि आपको भी यही करना है, रहम भाव की भावना रखनी है और उदाहरण उद्धार मूर्त बनना है। तो ये एक संदेश था दादी जी का उसमें भी। तो कैसे हम दानी बने, कैसे हम दान करें। हमारी दादियां देखो, हमको लगता है ना वो स्टेज पर आके बैठते हैं तो कितने हमारे साथ घुल मिलते हैं। उस दिन जिस दिन राखी था हम रतन मुनि दादी को देखने गए, हमको बोला गया था कि नीचे जाके दादी का बीपी वीपी चेक करना है, ठीक नहीं है। हम जल्दी जल्दी कॉटेज की तरफ दौड़ रहे थे और देखा तो दादी की आवाज तो हॉल में से आ रही थी और दादी तो स्टेज पर बैठे थे सबके साथ राखी का फंक्शन मना रहे थे। और फिर दादी को बोला गया कि चलो अभी तबीयत ठीक नहीं है अभी चलो, तो भी दादी उठे नहीं जब तक फंक्शन एंड तक नहीं आया। और जब कॉटेज में लेके गए तो बीपी कितना हाई था, लेकिन उनके बिहेवियर से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दादी बीमार है। तो उनकी ब्राह्मणियों ने कहा कि दादी की दवाइयां ही ये है, बच्चों से मिलना। ऐसे ही एक बार जानकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थे और कोई भाई जी मधुबन से मिलने के लिए आए, और जब वो मधुबन से मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के सारे भाई बहन दादी के रूम में हैं, तो उन्होंने और दादी क्लास करा रहे थे हमको। तो उन्होंने कहा अरे मुझे तो लगा आप बीमार हो। तो हंसा बहन ने कहा कि इसकी दवाई ये है, ये सब जो है ना ये इनकी दवाई है। तो देखो दादियां कैसे कैसे दानी है, वो बीमारी में भी कैसे है। ऐसे ही प्रकाशमणि दादी जी के लिए बाबा ने कहा था कि वो जब बेड पे थी ना तो वो पेशेंट नहीं थी, परंतु आप लोगों को पेशेंस में रहने का वो दे रही थी, दान दे रही थी, वो शिक्षा दे रही थी आप लोगों को। दादी जी से सबको पता होगा मिलने जाते थे तो दादी दृष्टि देती थी, मुस्कुराती थी। बीएससीएस में जब दादी एडमिट थे तो वहां के स्टाफ बोलते थे कि दादी को अगर ब्लड का प्रिक भी करने आते थे ना तो दादी को कुछ महसूस नहीं होता था, एक इंजेक्शन लगा तो लोग कितना चिल्लाते हैं, लेकिन दादी को कोई महसूसता नहीं थी, रोज इतने प्रिक्स कर रहे हैं कुछ भी नहीं। तो ये है दान। फिर उसके बाद आगे जैसे कि अभी दादी ने संदेश में कहा कि साधन और साधना का बैलेंस है ना, तो पुरुषार्थ जब हम कर रहे हैं तो ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम हमारे साधनों को यूज कर रहे हैं। तो अभी रिसेंट माया जो है वो तो 4G है, सबको पता है कि वो आ गई है माया, तो इसको परखे हम कि क्या है ये, क्यों ये कर रहे हैं, कैसे। देखो उन आत्माओं की बुद्धि को रावण प्रेरित करता है कि वो ऐसे ऐसे इन्वेंशंस करते हैं और हम उन सब के पीछे जाने लगते हैं, फिर क्या होगा, ले तो लेंगे फिर फ्री है तो उसको ज्यादा यूज करेंगे, है ना। मनुष्य की तो यही आदत होती है कि जो चीज फ्री मिले उसको खुल के यूज करो, दबा के यूज करो जब तक स्कीम है। तो ये भी एक है कि साधन और साधना का बैलेंस रखना है। आने वाला जो संडे है उसमें बाबा ने सर्वोत्तम पुरुषार्थ की डेफिनेशन दी है वरदान में, कि सर्वोत्तम पुरुषार्थ क्या है। हमारा चलन, चेहरा, हमारा उठना बैठना, ये सब कुछ फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराए और उसमें अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता नहीं होनी चाहिए। मतलब हम ऐसे ना चले, ऐसे ना बोले कि लोगों को लगे हम साधारण हैं। उसमें बाबा ने कहा कि जैसे कि अगर कुछ आपको करना है तो पहले आपको सोच कर करना है, ऐसे ना कि हमने कर लिया और फिर सोचे कि अरे ये कैसे हो गया। एक 71 की मुरली में बाबा ने कहा था कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर अगर कार्य करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। तो इस वरदान में भी बाबा ने यही कहा है। और बाबा ने कहा जो बाप समान है वही सर्वोत्तम पुरुषार्थी है। तो ये कुछ पुरुषार्थ की डेफिनेशंस थी, जैसे कि अंतर आंतरिक पुरुषार्थ करना है हमको, दूसरा हमने क्या मन की एकाग्रता, तीसरा जैसे चिंतन हम अपने ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ाएं, तो फिर उसके बाद दुआएं कैसे प्राप्त करें पुरुषार्थ में अगर आगे बढ़ना है, तो ज्ञान रत्नों का दान करें, साधन और साधना का बैलेंस और सर्वोत्तम पुरुषार्थ। अब हम कुछ प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से। अब इन पुरुषार्थ में विघ्न आने के क्या कारण हो सकते हैं? पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं ना, तो विघ्न किस रूप में आते हैं? नेट बहुत यूज करते हैं, तो इसीलिए हम मैं और मेरा पर चिंतन करते हैं। ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गई, पुराने संस्कार। तो जैसे कि सार रूप में ले, संस्कारों का टकराव, अगर स्वभाव संस्कार का टकराव हो रहा है तो ये भी एक पुरुषार्थ में विघ्न है। हम सब एक संगठन में रहते हैं, है ना, तो हमको एक दूसरे पे ध्यान देना है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं अपना काम ठीक से करूं और दूसरा अपना काम करे, हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम सुबह में अपने आप को भर तो लेते हैं, परंतु दिन भर दिन पूरा लीकेज होता है, और फिर हमको लगता है कि हमने क्यों नहीं किया ये ठीक से, ऐसा क्या हो रहा है कि, है ना, पुरुषार्थ में हम आगे नहीं बढ़ रहे, स्थिति अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म विघ्न है। एक बार मोहिनी बहन जी, उनको मुरली लिखने का सेवा थी, और भंडारी में एक दूसरी बहन थी, तो वो मुरली लिखते थे और भंडारी में लेट जाते थे भोजन को, तो उस बहन को भोजन के लिए वेट करना पड़ता था। तो उन्होंने मम्मा से कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जल्दी जाना चाहिए, तो फिर भी वो अपना काम मुरली का खत्म करके ही जाते थे। फिर मम्मा ने क्या किया, दोनों की ड्यूटी एक्सचेंज कर दी, उनको मुरली की सेवा दे दी और उनको भंडारी में दे दी। फिर उनको एहसास हुआ कि समय कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सूक्ष्म एक विघ्न हुआ ना हमारे पुरुषार्थ में। एक तरफ अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और किसी का समय नष्ट कर रहे हैं हम, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं ना। दूसरा, जैसे कि हम यज्ञ की चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बार दुलारी दादी कानपुर के वो आए थे कुछ सेवा के लिए, वो बाबा के साथ भंडारी में गए, ब्रह्मा बाबा के साथ, और उन्होंने देखा कि वो गैस जल रहा है, तवा ऐसे ही रखा हुआ है। तो बाबा ने कहा, अरे देखो बच्चे कैसा वेस्ट करते हैं ये, हाँ। और फिर बाबा खुद ही रोटी बेलने लग गए, और बाबा को कितना बुरा लगा उस समय कि हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बोझ है हम पर अगर हम ये सब चीजें वेस्ट करते हैं। एक बार हमने पढ़ा था, दादी जानकी ने लिखा था शायद, कि अन्न का एक दाना भी बेसिन में नहीं जाना चाहिए, हमारी प्लेट से अन्न का एक दाना भी बेसिन में नहीं जाना चाहिए, इतनी हमको वैल्यू होनी चाहिए ब्रह्मा भोजन की। अगर हम एक तरफ पुरुषार्थ करें और एक तरफ ये करें कि ब्रह्मा भोजन की इंसल्ट करें हम, अगर हम वेस्ट करें तो कैसा होगा, है ना, क्योंकि उसकी कितनी वैल्यू है ये तो हम सब जानते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जब हम संगठन में हैं और बैठ के योग करते हैं, तो हम ऐसे ना करें कि किसी और को हमारी वजह से डिस्टर्ब हो, है ना। बहुत सारे लोग बैठे और हम थोड़े लेट आए, तो लेट आए तो ऐसे घुस के आते, सबको पता है ऐसे घुस के आते कि एक दो को लात मारते हुए आगे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, हाथ में बैग होगा, नीचे जो बहन बैठी होगी उसको लग के चले भी जाएंगे तो भी पता नहीं चलता है। उसका योग आपने डिस्टर्ब कर दिया, अब आप योग में बैठेंगे तो आपका योग कैसे लगेगा, उसको आपने परमधाम से नीचे लाया, सूक्ष्म वतन से आपने उसको नीचे लेके आ गए, तो हमारा योग कैसे लगेगा। तो ये सब बहुत ध्यान देने की बात है। कभी कभार पेशेंट ओपीडी में आके कहते हैं कि ना मधुबन में आए ना तब से नींद नहीं आ रही, घर पे थे तब तक नींद आती थी। तो हम पूछते क्यों, तो बोलते हम दस दस ऐसे लोग रहते हैं ना, तो कोई माता आके लाइट चालू कर देती है, कोई आके आवाज करता है, तो कैसे सोएंगे? तो कैसे एक दूसरे का ध्यान रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को भी, आए स्लोली चले, अपना काम किया रखे, बहुत ध्यान देने की बात है। हम ये जो सोफे पर भी बैठते हैं ना, बाबा ने एक साकार मुरली में कहा था कि हमारा अंग अंग टच ना हो एक दूसरे से जब हम योग में बैठे, तो जब हम आके बैठते भी है ना, तो इस छोटी सी चीज का भी हम ध्यान दें। देखो कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन वो खाता बढ़ा रही है और जमा कर रही है ना। तो एक ये है संस्कारों की टक्कर। दूसरा, संस्कारों की टक्कर में होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं राइट हूँ, और हम कहते हैं हम राइट है। ये तो सारी जगह पे होता है, आप और हम में भी डिफरेंस होगा। इस माइक को भी अगर हम ले ले तो हम बोलेंगे ये गोल है, आप बोलेंगे यहाँ से वायर है, आप भी राइट हो मैं भी राइट हूँ, है ना। तो ये टक्कर हमेशा आएगी, इसीलिए दोनों राइट है ये ध्यान देते हुए चले हम। ये विघ्न आए ना, ये आएगा ही, ये तो सबके साथ होता है, हर जगह पे होता है, सेंटर पे होता है, मधुबन में होता है, घर में होता है, जहाँ पे हम जॉब के लिए जाते हैं उधर होता है कि बॉस राइट है या मैं राइट हूँ, लेकिन नहीं, हम दोनों ही राइट है। तो संस्कारों की टक्कर। दूसरा विघ्न पुरुषार्थ में आता है बीमारी का, है ना। बीमार हो जाते तो पुरुषार्थ तो गया, ऐसा होता है। लेकिन मम्मा कहती थी कि आपकी बीमारी आपके पुरुषार्थ में विघ्न ना बने, आपके पुरुषार्थ और सेवा में आपकी बीमारी विघ्न ना बने। हम हमेशा एक बात याद रखते हैं कि बीमारी अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे, वो तो आने ही वाली है, हिसाब किताब कैसे चुकते होंगे नहीं तो। हम जगदीश भाई का एक लेख पढ़ रहे थे, बड़ा ही रमणीक था, कि बीमारी के समय कैसे योग युक्त रहना है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर बीमारी के समय आवाज निकलती है पीड़ा में, हूँ हूँ, तो क्या करो? तो जैसे हमेशा यहाँ के भाई बहन बताते, जगदीश भाई जब हॉस्पिटल में थे और ऐसी आवाज निकलती थी उनके मुंह से हूँ हूँ, तो वो कहते थे, जगदीश भाई जी आपको पीड़ा हो रही है? तो कहते थे, नहीं मैं तो याद कर रहा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो उस लेख में उन्होंने लिखा है, जब आपकी पीड़ा हो ना, हूँ हूँ निकले मुंह से, तो याद करो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे उन्होंने चार आवाज निकाली है उसमें। फिर उन्होंने कहा, अगर ऐसे मुंह से निकले आई आई, ऐसे निकलता है ना कभी मुंह से, तो लिखो आई प्रभु, ऐसे याद करो, या तो याद करो आई आई, इंग्लिश में आई कहते हैं ना, आई एम सोल, मैं एक आत्मा हूँ। और अगर ओ ओ निकले, तो अगर ओ की ध्वनि निकले तो क्या करो? ओ भी बोल सकते हैं, उसमें उन्होंने कहा है ओम की ध्वनि करना चालू करो जब ओ ओ निकले, और अगर हाय निकले तो क्या करे? हाय शिव बाबा। ऐसे तो बाबा मना करता है, लेकिन देखो बीमारी में योग युक्त कैसे रहे और ईश्वर की तरफ अपना ध्यान कैसे लगाए। तो जब ये चार प्रकार की आवाज निकलेगी कभी भी बीमारी में, तो ये कर सकते हम। नहीं, जब ऐसे हाय निकले मुंह से, तो उस टाइम याद की, याद करने की युक्ति है उस दिन। बाय तो नहीं करनी है, हाय बाय बाय, बीमारी को बाय बाय नहीं, हमारे मुंह से पीड़ा नहीं करी ना, हाय हाय, तो हाय करते हुए तन की तरफ हमारा अटेंशन ना जाए, उसकी तरफ अटेंशन जाए, इसीलिए हाय शिव बाबा। फिर अगर जिसको सिर दर्द होता है तो उसको क्या समझना चाहिए? कि मैं डबल सिरताज हूँ। डबल सिरताज बनने वाला हूँ। और अगर किसी की दोनों पैरों में दर्द हो, है ना, माताओं के पैरों में दर्द होता है ना, तो सोचे कि बाबा ने मुझे दो टांगे दी है, ज्ञान और योग की दो टांगे दी है बाबा ने। तो, नहीं तो पूरे ही सिर का समान ले। फिर उसमें था कि अगर किसी को दिल का रोग है तो वो कहे कि दिलबर बाबा मुझे मिला है, है ना। और अगर किसी के नेत्र में कोई प्रॉब्लम है तो बाबा ने मुझे दिव्य नेत्र दिए हैं। अगर किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है तो सोचे कि बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि दी है। और अगर किसी को पूरे शरीर में ही पीड़ा है तो क्या करे? चलो कौन बताए क्या करे? तो विराट रूप का अपना साक्षात्कार करें कि देखो। तो बीमारी में कैसे याद रखे, उस दिन एक स्लोगन था ना कि अगर थकावट आए तो क्या करो? खुशी में नाचो, खुशी में डांस करो, तो क्या होगा? मूड ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो बीमारी भी जब आए ना तो दुखी नहीं होना है। बाबा ने इस साकार मुरली में बहुत सारे पॉइंट बोले हैं कि बीमारी आ रही है तो हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, बीमारी आ रही है तो बहुत अच्छा है, जिनको बीमारी नहीं आती उससे आप अच्छे हो। क्यों? क्योंकि धर्मराजपुरी से आपको पास नहीं होना पड़ेगा, आपके तो यहीं चुकतू हो रहे है, तो अच्छी बात है। बीमारी में हम बाबा को ज्यादा याद करते, ज्यादा पुरुषार्थ करते, है ना। टांगों में दर्द होगी तो पुरुषार्थ करेंगे, सिर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा तो पानी चार्ज करके पिएंगे, वरना ऐसे तो पानी लिए और अंदर। लेकिन जब बीमारी होती है तो पुरुषार्थ की एक एक चीज पर अटेंशन रखना चालू हो जाता है। तो धन्यवाद करो उसको कि हिसाब किताब चुकतू हो रहे, और मशीनरी बहुत फास्ट चल रही है ना, तो अच्छा है। आत्माओं से भी हिसाब किताब चुकतू हो रहे और इससे भी। और कैसे विघ्न आते? एक कहते अलबेलापन, अलबेलापन आता है ना, जैसे कहा ना कि ठंडी गर्मी, ठंडी में क्या होता है सोने का मन करता है कि चलो अभी जाके सोए, अभी थोड़ी दिन में ठंडी आ जाएगी तो इतने इतने स्वेटर्स पहन के हम निकलेंगे बाहर, और फिर मन करेगा जाके सो जाओ, तो फिर उसमें क्या याद रखेंगे? तो ऐसे कहते हैं कि अगर सोमवार को अलबेलापन आए मंडे तो क्या करो? अरे वाह, सोम रस पियो। तो कहना कि आज तो मंडे है, आज हफ्ते की शुरुआत है, कल आना, ठीक है। और अगर मंगलवार को अलबेलापन आए तो क्या कहना? मंगल को अमंगल नहीं बनाएंगे। और अगर बुधवार को अलबेलापन आए तो बुध तो शुद्ध है तो उसको अशुद्ध क्यों करे। और फिर गुरुवार को आए तो सत गुरुवार है ना। और फिर क्या है, शुक्रवार को आए तो क्या करे? भगवान का शुक्रिया करे, अलबेलेपन को ना आने दे। और फिर शनिवार, तो शनि को तो हम अपने घर में आने नहीं देंगे, है ना। और अगर रविवार को आए तो छुट्टी है, रविवार को तो छुट्टी है, तो अपने पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ रमणीकता लाए, इतने भी गंभीर होके ना बैठे, नहीं तो पुरुषार्थ नहीं होगा। गंभीरता ना लाए, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस हो। तो इस तरह से विघ्न आते हैं। और किस चीज में, और किस चीज से विघ्न आ सकते हैं? स्वभाव संस्कार, तो जैसे हमने बोला संस्कारों की टक्कर होती ना, हाँ संस्कारों की टक्कर होती है। और संबंधों से, साधन, जैसे हमने बोला ना साधन और साधना का बैलेंस होना चाहिए, कलयुगी दुनिया के वाइब्रेशंस, हाँ तो उससे भी बचकर रहना है ना। इसलिए वो दादी का पॉइंट था ना कि है ना, कोई भी देहधारी को अपना दोस्त नहीं बनाओ, और उसके साथ व्यर्थ चिंतन और परचिंतन करते नहीं बैठो। उस दिन हम एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें था पवित्रता पे वो मुरली थी, और अगर आप संबंधों में, दूसरों के साथ संबंधों में अगर ज्यादा रहते हैं, यानी कि बाप के साथ आप संबंधों में हारे हुए हैं, यानी कि हमारा संबंध बाप से नहीं जुड़ा हुआ है, उन आत्माओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए संबंधों में भी हम हारे हुए हैं बाप से, इसीलिए उनकी तरफ आकर्षण हो रहा है और फिर उनकी तरफ बुद्धि जाती है। फिर अगर वो बीमार पड़ते हैं तो हमको कितनी चिंता होती है ना। लेकिन नहीं, हम उनको आत्मा देखें, वो आत्मा है। एक ऐसे ही अनुभव था, मोहिनी बहन जी न्यूयॉर्क के, उनके कनेक्शन में कोई पेशेंट थे, वो एडमिटेड थे, बहुत यंग पेशेंट थे, उनका सारा परिवार ज्ञान में था, और वो लोग बहुत योग कर रहे थे और लेकिन फिर भी वो जाग नहीं रही थी, वो क्रिटिकल हो गई थी। फिर मोहिनी बहन जी कोई दूसरी कंट्री में थे, फिर वो आए इस कंट्री में और फिर उन्होंने उन्होंने सिर्फ उसके साथ आत्मा देख के बात की उससे, और बाबा के साथ ऐसी रू रिहान की तो वो उसकी आंखें खुल गई और वो बाहर आई। तो उन्होंने, वो परिवार ने कहा कि हमारा तो योग ही नहीं लगता, मतलब हम तो मतलब फीके पड़ गए योग में, आपका योगी लगता है देखो, हमारा तो योगी नहीं लगता। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उसको अपनी बेटी की तरह देख रहे हो, अपनी बहन की तरह देख रहे हो, लेकिन मैं उसको एक आत्मा की तरह देख रही हूँ। तो संबंधों से हमको भी विघ्न आ सकते हैं, और किस चीज से विघ्न आ सकते हैं? संग दोष, हम किस संग में रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, है ना। संग जैसे कि हमारे लिए परफ्यूम है, क्या परफ्यूम हमने पहना है। जो लोग हमारे साथ रहते हैं ना, हम वैसे ही बनते जाते हैं। अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बनेंगे, अगर हम अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे। इसलिए मधुबन का वातावरण आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मधुबन में सब ब्राह्मणों का संघ है, तो इसमें पुरुषार्थ भी करना है अच्छे से। और दिनचर्या का ऊपर नीचे होना, तो हाँ क्यों होती है वो दिनचर्या ऊपर नीचे, क्या विघ्न आते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है? ये सब चीजें जो होती ना, ये भालू आना, बंदर आना यहाँ पे, ये ठीक है, ये तो जंगल है, इधर तो आएंगे ही ना, लेकिन उसमें भी लोग कितने, उसमें भी माया है, आपको पता है ना। उसको भी देखने में लोग इतने लग जाते हैं और उसके पीछे जाते हैं, और मतलब अमृत वेला भी उसके पीछे दौड़ेंगे कि है ना भालू आया, उसको देखने जाएंगे, भगवान को छोड़ के भालू देखने जाते हैं। तो ये भी विचित्र बात है कि ये भी एक पुरुषार्थ में विघ्न ही हमारे, भोजन में आ सकती। भोजन तो हमेशा डिस्कस कर चुके हम यहाँ पे, भोजन के बारे में भी कितनी बार, कि भोजन में कितनी आसक्ति होती है, लेकिन हम जितना खाना है उतना ही अपनी प्लेट में ले, है ना। पुरानी बातों की, पुरानी बातों से भी विघ्न आते हैं, तो जैसे कि पुरानी बातें याद करेंगे तो फिर पुराने चिंतन में ही लग जाएंगे, तो फिर पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पुरानी बातों को भी फुल स्टॉप लगाना है, बीती सो बीती। और मान शान, ये भी एक है, जब तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो फिर एक अलग सी माया आती है मान शान की, कि हमको भी कोई मान दे, शान दे, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमको कोई पोजीशन दे, सीट दे, अरे ये तो पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे, और है ना हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना, तो हमको लोग ऊपर बिठाए। और जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ये बहुत सूक्ष्म चीज है कि ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो ये हमसे नीचे है और हम इनसे ऊपर है, ऐसे लगने, हाँ हमको कोई पूछे ऐसा लगने लगता है हमको, लेकिन ये भी रॉन्ग बात है। तो ये भी एक विघ्न ही है पुरुषार्थ में। और हाँ परिस्थितियां तो आएंगी, तो किस रूप में आती है? नींद, अगर प्यार नहीं है बाबा से तो सब में विघ्न ही विघ्न है। दूसरा कहा नींद, पुरुषार्थ में एक है विघ्न, वो है नींद, नींद आना। पुरुषार्थ की तो इच्छा हम में है, लेकिन हम योग में आके बैठते तो क्या होता है, नींद आती है। तो नींद के लिए क्या करें? नींद आने के तो पहले कारण कि नींद क्यों आती है, एक तो हम अगर टाइम पे नहीं सोते तो नींद आएगी, अगर हमने रेस्ट नहीं लिया ठीक से तो नींद आएगी, अगर हमें कोई शारीरिक बीमारी है तो नींद आएगी, अगर हम कोई दवा ले रहे हैं तो नींद आएगी, और अगर हम बहुत सूक्ष्म लेवल पे देखें तो अगर कुछ भी नहीं है तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म हमारे हिसाब किताब है, विकर्म है, इसीलिए नींद आती है। तो नींद आएगी तो क्या करने का, इस विघ्न को कैसे हटाए? हैवी भोजन, तो भोजन ठीक से करें, है ना। तो रात का भोजन ऐसा ना हो कि हमारा बहुत पेट भर के हो, कि सुबह में उठे ही ना जाए, है ना। योगी का भोजन कैसा होता है तो सबको पता है, तो भोजन, तो एक नींद को कैसे हटाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आते हैं वातावरण को दूषित कर देते हैं नींद के कारण, और हमारे पे तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे माताएं बैठी है, उस दिन हमने एक मुरली पढ़ी, उसमें था कि एक एक कुमारिया तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, बाबा कहते हैं ना, और माता तो जगत माता है ना, तो सारे जगत की माता है, तो कितना जिम्मेदारी है आप पे। तो अगर माताएं सोएंगी तो क्या होगा, तो सारा जग सोएगा। तो कितने हमारे पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये छोटे छोटे विघ्न हमारे हमारे जो संकल्प है ना उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो जो संकल्प है ना वो बीज है ना। तो जैसे कि उस दिन कोई उदाहरण दे रहा था, साउथ कोरिया में कोई एक ब्रिज है, वो ब्रिज बन गया तो बहुत लोग जाके उस पे से सुसाइड करते थे, जंप लगाते थे और सुसाइड कर रहे थे। तो फिर वहां की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या करे ऐसा कि है ना ये सुसाइड रोक दे। उसका नाम ही पड़ गया ब्रिज ऑफ डेथ, है ना, मृत्यु वाला ब्रिज, ऐसा उसका नाम पड़ गया। तो फिर सोचा गया कि क्या करे, तो फिर उस ब्रिज पर अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगाए गए। कैसे स्लोगन्स, कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है घर पर, इस दुनिया में कोई तो है जो तुमको बहुत प्यार करता है, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगाए गए। और फिर वहां पर कोई डेथ नहीं होने लगी और अभी उसको ब्रिज ऑफ लाइफ कहने लगे। तो वो जड़ स्लोगन्स लगाए हुए हैं और हम कौन है, हम तो चैतन्य में है और हमारे संकल्प कितने इफेक्ट करते दुनिया पर। तो हम जो संकल्प करेंगे वो पूरे संसार में फैलने वाले है ना। तो सोचो वो एक ब्रिज और वो स्लोगन कितना काम कर गया कि मृत्यु ही रोक दी उसने। तो हम चैतन्य में इतने महान आत्माएं, देवी देवताएं, अगर हम जो संकल्प करेंगे वो संसार में फैलते हैं, तो कितना अटेंशन देना है। तो जब विघ्न आते हैं तो हलचल में ना आए, है ना, तो अपने संकल्पों को बचा के रखे। और जैसे कि दादी जी का उस दिन वो 10 पॉइंट थे, उसमें से दादी जी ने 4 मंत्र बताए थे, किसी को याद है, वो 4 मंत्र थे ना, उसमें पॉइंट थे कि अलबेलापन नहीं आना है तो, और अलर्ट रहना है, किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, और किसी भी मित्र संबंधी से प्रभावित नहीं होना है। तो पुरुषार्थ में इन बातों का ध्यान देना है। एक छोटी सी चीज से एंड करेंगे हम। हमने अपने पुरुषार्थ में देखा लास्ट एक महीने में कुछ नई चीज देखी जो हम बता रहे हैं। हमने संदेश जो आते हैं ना बाबा के, उस पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हमको हमारे मॉर्निंग क्लास में होमवर्क था कि 12 संदेश पढ़ के आने। और जब हमने वो 12 संदेश पढ़े ना, तो हर संदेश से कुछ ना कुछ योग का प्रयोग निकला, और योग का प्रयोग जो उसमें से निकला, और वो योग का प्रयोग जो हमने हमारे पुरुषार्थ में डाला, और योग जब किया तो इतना अच्छा योग होने लगा, और विजुलाइजेशन पावर जो होती है ना, वो जो संदेश में रहती है, वो कुछ मुझे नई बात लगी पुरुषार्थ में, जो कि अभी तक कभी मैंने यूज नहीं की थी। तो ये एक बात बतानी थी कि संदेशों पर भी ध्यान देना है, इसलिए संदेश भी पढ़ने हैं हमको। तो ये थी कुछ चर्चा पुरुषार्थ पर और पुरुषार्थ में आने वाले विघ्नों पर दादी के संदेश में। विघ्न विजन, विजन एक बता देते जितने हैं उतने याद। एक दादी, एक मंडप था और दादी उस मंडप में खड़े हैं, और एक जैसे कि एक देवी रूप में थे, और सामने ग्लोब था दादी के, और दादी जैसे कि हाथ ऐसे ऊपर करके उसको सकाश दे रहे थे, और ग्लोब में परिवर्तन आते जा रहा था, और आत्माओं को अनुभव होते जा रहा था, आत्माओं को प्राप्ति होती जा रही थी। तो हम अपने योग में ये प्रयोग करें कि हम एक देवी रूप में खड़े हैं, विश्व का ग्लोब हमारे सामने है, और हम सकाश दे रहे हैं और विश्व के ग्लोब की आत्माओं को अनुभव करा रहे हैं। एक ऐसा था दादी का, जैसे बहुत बड़ा विशाल रूप था और 1000 भुजाएं थी, और हर भुजाओं के नीचे बहुत सारे हम बच्चे थे, और दादी हम सब बच्चों को वरदान दे रही थी, और ऐसी विश्व की सारी आत्माएं आती जा रही थी, और बाबा और दादी विश्व की आत्माओं को यज्ञ में आते देख बहुत खुश हो रहे थे। तो एक ये विजन था। तीसरा, एक बहुत चमकती हुई पहाड़ी थी ऊंची, और ग्लोब था चमकता हुआ, और वहां से बाबा और दादी जी खड़े रह के सारी विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे थे, ऐसा था। और फिर एक था साक्षात्कार देवी के रूप में दादी का, हजार अष्टभुजाधारी दुर्गा का, कि दादी ने हमेशा कोई भी कार्य जो किया वो सबको मिलकर किया, सबको साथ में लेकर किया, कभी भी अकेले नहीं किया। तो वो एक विजन था। तो ऐसे छोटे छोटे काफी विजन है। और जैसे कि पुष्पक विमान में भी बताया है कि पुष्पक विमान में फैलते हुए और है ना फैलता हुआ लाइट आ रहा है और हम सारे संसार को लाइट फैला रहे। फिर एक तारा मंडल में हम अपने आप को तारा देके चंद्रमा के पास, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा और हम सबसे तेजो में तारा है, तो उसमें था कि दादी सबसे तेजो में तारा है, तो हम अपने आप को ऐसे देखे। ऐसे जब हम इस चीज को, कुछ नहीं है ना, ये रमणीकता है पुरुषार्थ में, नवीनता है पुरुषार्थ में, रोज आके बैठना, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है और वही लाइट हम पर आ रही है, तो थोड़ा बोर होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ नवीनता लानी है पुरुषार्थ में। तो कभी कभार बैठ के हम ये भी कर सकते हैं। ओम शांति।